Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ki jis dhan ko va 10 varsh mein prapt kar sakta usko kehta hai ek varsh ke andar hi hona chahiye. जो काम 20 वर्ष में उसको 10 वर्ष के अंदर करना चाहता है, क्योंकि हमने संसार के विषय को, पदार्थों को, धन को इतना महत्व दे दिया है कि सब कुछ छोड़कर उधर तत्परता से, स्थिरता से लग जाते हैं। वैसी स्थिरता तत्परता भगवान के भक्ति में हो तो भगवान तत्काल दर्शन दे देते हैं, हमारी स्थिरता में ही कमी होती है। तो यहां पर बताया कि किस प्रकार से रावण ने व्यष्टि को समष्टि में विलय किया। ये जो व्यष्टि मतलब कि हमारे आंख है, आंख का तेज सूर्य का अंश है, कान में श्रवण इंद्रिय है यह आकाश का अंश है, दिग देवता का अंश है। तो सारे देवताओं को जो व्यष्टि मंश है, इस व्यष्टि को समष्टि में मिलाना ही ये भक्ति है। यही भक्ति रावण ने किया। अपने आप को रावण ने सर्वात्म रूप से चिंतन किया, शिव में चिंतन किया, जिसे प्रसन्न होकर भगवान उसे तीनों लोकों का अधिपति बना दिया। फिर भी रावण को अहंकार हो गया, क्योंकि मन को समर्पित नहीं किया था। यह बात आपको 12वें श्लोक में बतला रहे हैं, उच्चारण करने पहले। अमुष्य त्वत्सेवा समधिगत सारं भुजवनम् बलात् कैलासेपि त्वदधिवसतो विक्रमयत अलभ्या पाताले प्यलसचलितंगुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मूयति खल। त्वदधिवसतो कैलासे, भगवान शंकर हमेशा कैलाश पर निवास करते हैं। कैलासेपि त्वद अधिशतौ अपि त्वद सेवा समधिगत सारम। कैलाश पर जहां भगवान शंकर नित्य विराजमान रहते हैं, वहां पर भी त्वद सेवा समधिगत सारम, आपकी सेवा से जिस रावण ने भुजवनम 20 भुजाओं का एक बन प्राप्त किया, बलात् मतलब की अत्यंत बहादुरी के साथ, विक्रम यत मतलब कि उस कैलाश पर्वत को अजमाने लगा। अमुष्य उस रावण को, त्वयि मतलब आपके, अलस चलित अंगूठ शिरसि, आप जरा सा अलसाए हुए अंगूठे से दबा दिए। इसके बाद क्या हुआ, पाताले अपि प्रतिष्ठा, पाताल में भी प्रतिष्ठा मतलब टिकाऊ, अलभ्या नहीं मिला। आसित खल उपचित ध्रुवम मुयति, जो खल है वह समृद्ध होने के बाद अवश्य ध्रुवमल अवश्य मुयति, उपकारी को भूल जाता है। तो इस श्लोक में रावण के विषय में बतला दिया किस प्रकार रावण मुग्ध हो गया। व्यवहारिक जीवन में भी जब मनुष्य को ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है तो वह मुग्ध हो जाता है, माता पिता गुरु का भी तिरस्कार कर देता है। जिसके द्वारा लालित पालित हुआ, शिक्षित हुआ, इतना बड़े उच्च पद को प्राप्त किया, पर अहंकार ऐसा है ना कि अंधा बना देता है। इसी बात के श्लोक में बताया कि भगवान शंकर कैलाश पर निवास करते हैं, मां भगवती पार्वती बाजू में बैठी हुई हैं। रावण पहुंचा, पहुंचने के बाद सोचा कि अब सारे दुनिया में कोई भी मेरे से लड़ने को तैयार नहीं, जरा चल के एक बार भगवान शंकर को ही अजमा लें। तो वहां जाकर जैसे ही हिमालय को वो सोचा कि जरा देखता हूं कितना इसमें बल है, उधर पार्वती जी बाजू में बैठी थी। जब रावण ने उठाना चाहा कैलाश पर्वत को, जरा कंपन हुआ, कंपन होती पार्वती जी तुरंत भगवान शंकर को पकड़ ली। पार्वती जी ने कहा ये क्या हो रहा है, इतना भूकंप आ रहा है या कोई ज्वालामुखी फट रहा है, अचानक ये क्या हो रहा, आप यहीं बैठे हैं और ये दूसरा कौन संहार कर रहा, संहार के देवता आप है, आपसे भी कोई बड़ा देवता तो नहीं बन गया जो कि इस हिमालय के ऊपर जो है आपका कैलाश उसको भी उठाना चाह रहा है। भगवान शंकर समझ गए, मुस्कुराए, बोले कि वही जो तेरा चेला है ना रावण, रावण जो है जरा अपने बल को अजमा रहा, परंतु भगवान की अंगूठा हिलाते ही बेचारा पाताल लोक पहुंच गया, वहां भी उसको कोई शरण नहीं दिया। तो देखिए कैलाश शब्द का अर्थ यदि विचार करें शब्द के ऊपर, कई गई शब्द है, शब्द मतलब शब्द अर्थ में धातु है, कई गई शब्द धातु है, कई शब्द गई शब्द शब्द अर्थ में ये धातु का प्रयोग होता है, और लास शब्द का अर्थ होता है रलयोर अभेद, रकार लकार का भेद होता है, तो रास रस एव रास, श्रुति कहती है रसो वैश, रस परमात्मा है जो ब्रह्मानंद है, तो रस एव रास, तो कैलाशे का अर्थ है ब्रह्मानंदी, जिस उपनिषद में ब्रह्मलोक शब्द आता है तो भगवान शंकराचार्य व्याख्यान करते ब्रह्म लोक ब्रह्मलोक, ब्रह्म अलग लोक अलग दो चीज नहीं बल्कि ब्रह्म वही लोक है। यहां पर भी कैलाशे का अर्थ है जो औपनिषद प्रतिपाद्य जो ब्रह्मानंद उसी का नाम है कैलाश, उसी ब्रह्मानंद में भगवान शंकर हमेशा रमण करते हैं या तद्रूप है। कैलाश शब्द की बड़ी भारी महिमा है, जहां पर कैलाश वहां पर भगवान शंकर अपने आप विराजमान होते हैं। ऋषिकेश कैलाश की भी ऐसी ही कुछ घटना है, बहुत कम लोगों को मालूम होगी। कैलाश आश्रम के आदि महाराज जिनका नाम था धनराज गिरी जी महाराज, करीब 150 वर्ष पुरानी घटना होगी, तो आदि महाराज उस समय पंच कुटिया बनाकर रहते थे, स्वाध्याय करवाते थे वेदांत का। उन्हें रात में दो बार तीन बार सपना हुआ, सपना में महादेव ने संकेत दिया, वह संकेत था हरिद्वार के सेठ भारामल बगीची, कनखल के अंतर्गत पड़ता है, हरिद्वार में कनखल एक क्षेत्र का नाम है, कनखल में भारामल सेठ की बगीची थी, उस बगीची का दृश्य था सपने में, और भगवान बार बार कह रहे थे कि तुम मुझे यहां से उठा ले जाओ, क्योंकि गंगा के प्रवाह से ये मेरा लिंग बहने वाला है। एक बार दो बार तीन बार सपना हुआ, ध्यान नहीं दिए, बोले सपना ऐसे होता रहता है। जब बार बार हुआ तो आदि महाराज धनराज गिरी ने सपने में ही कहा कि देखिए महादेव, मैं तो हूं विरक्त सन्यासी और मैं आपको ले आकर के स्थापना कर दूंगा, आप कौन आपकी आरती पूजा करेगा, कौन भोग लगाएगा, ये कहां से इतनी व्यवस्था होगी। भगवान शंकर ने स्वप्न में ही निर्देश दिया कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम मुझे ले जाकर स्थापना कर दो, केवल वेदांत सुनाना और सारी व्यवस्था का भार मेरे ऊपर छोड़ दो। जब भगवान शंकर ने ऐसा आश्वासन दिया स्वप्न में, तो जैसा स्वप्न हुआ था वैसे ही 10-12 महात्माओं को लेकर के धनराज गिरिज महाराज पैदल चल पड़े। उस समय इतने साधन नहीं थे और पैदल चल करके ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंचे, करीब 24 किलोमीटर है, और आकर देखते हैं सपना के आधार पर तो वही भारामल के बगीची में गंगा जी के प्रवाह से वह पूरा जो मंदिर था गिर चुका था और शिव पिंडी के पास से गंगा जी प्रवाहित हो रही थी। विधि विधान से स्वस्ति वाचन करते हुए अपने कंधे को उठा करके आदि महाराज महादेव को ले जाकर ऋषिकेश में जहां कैलाश आश्रम स्थापित कर दिया, उनका नाम रखा अभिनव चंद्रेश्वर महादेव। जब किसी मंदिर में भगवान शिव की प्रतिष्ठा होती है या राम की किसी देवता की, तो नाम संस्कार करना पड़ता है, तो उनका नाम रखा अभिनव चंद्रेश्वर महादेव। और आदि महाराज का नियम था कि उन्हें हर दिन जो है वेदांत श्रवण कराना, वेदांत श्रवण कराते थे और महादेव की जिम्मेदारी बन गई थी सारी व्यवस्था संभालना। यह आज भी कैलाश की विशेषता है, आप जाकर प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि कैलाश आश्रम में कम से कम 100 महात्मा अंदर रहते हैं और इससे ज्यादा बाहर से महात्मा आते हैं, हमेशा वेदांत का स्वाध्याय चलता रहता है। और उसी महादेव का ऐसी प्रताप है, उस संस्थान से बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। अभी डालमिया जी 3-4 रोज पहले मिले थे, बोल रहे थे कि कैलाश आश्रम सन्यासियों की, विद्वानों की फैक्ट्री है। जैसे फैक्ट्री माल निकलता है ना, अब आप देख लो चिन्मयान जी महाराज भी कैलाश की आचार्य जो तपोवन स्वामी थे उनसे वेदांत अध्ययन किए थे। विवेकानंद जी तो साक्षात आदि महाराज से वेदांत का श्रवण किए थे। जितने ही बड़े बड़े महापुरुष इस जमाने के हैं अक्सर प्रायः जरूर वहां साक्षात या परंपरा से जरूर ही जुड़े होंगे। उसी परंपरा में स्वनाम धन्य पंचम पीठाचार्य प्रेमपुरी जी महाराज हुए हैं, और जो कैलाश आश्रम में बिल्कुल हिमालय की गोदी में है वहीं से दिव्य ज्योति आपकी बंबई में आई। और बंबई में उन्होंने ऐसा कल्पवृक्ष लगाया जिसके नीचे श्रोता वक्ता दोनों बैठ करके वेदांत का स्वाध्याय प्रवचन श्रवण करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रेमपुरी महाराज के हम लोग पर कृपा आशीर्वाद वरदान है। कल्पना कीजिए, यह यदि वेदांत कलत्तरु नहीं होता तो हम लोग यहां पर इसका लाभ उठा नहीं पाते। संसार में सब कुछ सुलभ है, भगवान शंकराचार्य के वचनों में, पर तीन वस्तु अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मोक्षुत्व और महापुरुषों की संगति। परंतु इन तीन दुर्लभ चीजों को प्रेमपुरी महाराज जी ने यहां पर इस संस्थान के द्वारा सुलभ बना दिया। यहां के कार्यकर्ता ही बड़े धन्य हैं जो इस प्रकार से समुचित व्यवस्था करते हुए श्रोताओं का ध्यान रखते हैं। तो देखो कैलाश का अर्थ है कि जहां पर हमेशा वेदांत का श्रवण चले, ये केवल मात्र हमारे बुद्धि की व्युत्पत्ति नहीं है, ये शास्त्रीय व्युत्पत्ति बता रहा हूं। कई कई व्याकरण का शब्द है और रसो वैसा उपनिषद कहती है, रस एव राष्ट्र। तो कैलाशे का अर्थ होता है जहां पर अहर्निश वेदांत का स्वाध्याय चिंतन होता है उपनिषद का, उसको कैलाश कहते हैं। और वहां पर भगवान शंकर सूक्ष्म रूप से अवश्य विराजमान रहते हैं। परंतु ये जो रावण था, रावण ने क्या भूल कर दिया कि 10 सिर को तो समर्पित किया था पर मन को समर्पित नहीं किया था, इसीलिए ध्रुवम उपचितो मुह्यति खल। रावण जो है ना उपचित मतलब की समृद्धि प्राप्त करने के बाद मुग्ध हो गया, मुग्ध होने के बाद भगवान ने उसको भी दंडित किया। इधर पुलस्त्य जो रावण की पूर्वज हैं वे भगवान शंकर के पास आए, बोले महादेव आप इसके अपराध को क्षमा करें, ये महामूर्ख इसको पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। जब पुलस्त्य ऋषि आकर के भगवान से प्रार्थना किए तब जाकर रावण का फिर उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। यहां पर देखिए इस श्लोक का तात्पर्य इतने में है कि ध्रुवम उपचितो मुयति खल, इसका तात्पर्य है, श्लोक का हृदय है। व्यवहारिक जीवन में भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो नेता होते हैं वे चुनाव के पहले सवर्णों की निंदा करेंगे, ब्राह्मणों की निंदा करेंगे, परंतु जब घर में पूजा पाठ कराना हो या चुनाव में जीतने के लिए पूजा पाठ कराना हो तो किससे कराएंगे? ब्राह्मण से कराएंगे, भंगी से कराएंगे? ब्राह्मण से ही कराएंगे। एक तरफ तो चुनाव में जीतने के लिए ब्राह्मण से पूजा पाठ कराएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे जब सभा में तो वोट बैंक के लिए उसी की निंदा करेंगे। ऐसे ही जब नौकरी देना हो ना ब्राह्मण को, सवर्ण को, ब्राह्मण क्षत्रिय को, तो बोलेंगे महाराज ये तो स्वयं विकसित हैं, हमें जो है ना देना है आरक्षित को नौकरी, पर बीमार पड़ेंगे तो, जब बीमार पड़ेंगे तो आरक्षित डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे, बढ़िया डॉक्टर खोजेंगे जो बहुत कुशल हो। उस समय आरक्षित डॉक्टर से जाएंगे नहीं जानबूझ करके भी, ये तो आरक्षण के बल पर नौकरी प्राप्त किया है। मान लो अपना बढ़िया बिल्डिंग मकान दुकान बनाना हो तो आप आरक्षित इंजीनियर के पास नहीं जाएंगे, बल्कि जो बढ़िया कुशल हो उससे मकान बनवाएंगे। पर सरकारी काम करवाना हो, नौकरी लगवाना हो तो कोई भी आरक्षण वाला चाहिए। तो जो जिससे लाभ प्राप्त करके और ठुकरा दे उसको खल कहते हैं। खल की परिभाषा यही है कि जिससे लाभ तो प्राप्त कर ले, फायदा उठा दे और बाद में उसी को हानि पहुंचाए, उसका नाम है खल। तो जो ऐसे खल हैं वे खल हमेशा जो है तिरस्कार करते हैं, पर उनका कभी उद्धार नहीं होता है। इस 12वें श्लोक में पुष्पदंताचार्य जी ने बताया। अब आपको हम द्वापर में ले जाते हैं, क्योंकि जल्दी पूरा करना है ना। द्वापर में देखिए किस प्रकार से भगवान शंकर की उपासना किसने किया, पहले उच्चारण कर लें।
यद्रिदिम सूत्राम्लो वरद परमो चैरपिशति मध चक्रे बाण परिजन विधेयस्त्रिभुवन न तच्चित्रम तस्मिन् वरिवशितरी त्वच्चरणयो न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसाह्यै यवनति।
द्वापर में सूत्राम्लो वरद, यहां वरद भगवान शंकर का संबोधन है। हे वरद, बरमल श्रेष्ठा, बरम श्रेष्ठम ददादिति वरद, सर्वश्रेष्ठ है आत्मज्ञान, सबसे श्रेष्ठ धन है आत्मधन, इसके बाद फिर आपका शरीर है, द्रव्य सब बाद के हैं। तो जो आत्मज्ञान को देने वाले हैं ऐसे भगवान शंकर को वरद से संबोधन किया। परिजन विधेयस त्रिभुवन, आप परिजन का अर्थ होता है परिवार, मतलब कि बाणासुर ने आपको प्रसन्न करके तीनों लोगों को दास की तरह से अधीन बना लिया। बाणा मतलब बाणासुर, परमोच्चई सतिम, परमोच्चई का अर्थ सबसे बड़े चले श्रेष्ठ, सूत्राम्ला मतलब इंद्र, इंद्र का नाम एक सूत्राम्ला है, रिद्धि मतलब ऐश्वर्य को, अपि मतलब भी, यत मतलब जो, आधा मतलब के नीचे कर दिया, अभिभूत कर दिया, चक्रे तत मतलब वह, त्वत चरणयो आपके चरणों की, वरी वशीतरी का अर्थ है कि सेवा पूजा का ही प्रताप है, तस्मिन चित्रम इसमें कोई आश्चर्य नहीं, त्वयी शिरसी शिरसा अवनति आपके चरणों में सिर का झुकना है वह कस्से उन्नते न भवति, किसके उन्नति के लिए विकास के लिए नहीं होता है, अर्थात सबके उन्नति का कारण बन जाता है। ये जो बाणासुर है, बाणासुर भगवान शंकर को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके पूरे संसार को परिजन बना लिया, मतलब कुटुंब परिवार के समान। इंद्र को लोग मानते हैं, प्रणाम करते आदर्श जो करते हैं वह डंडे के भय से करते हैं, परंतु बाणासुर ने अश्वमेध याग नहीं किया। इंद्रासन पाने के लिए 100 अश्वमेध याग करना पड़ता है, इसके बाद आप इंद्रासन को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु बाणासुर ने अश्वमेध याग भी नहीं किया, केवल मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाता और बना करके फूल पत्ती से पूजा करता, पूजा करने के बाद नर्मदा जी में उसको फिर विसर्जन कर देता। इस प्रकार से बाणासुर हर दिन मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाए, बनाकर पूजा कर विसर्जित करता था। इस पूजा से भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए, उसको मुहमांगा वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद उसने पूरे संसार को परिजन मतलब परिवार के समान, देखिए परिजन में और प्रजा में अंतर है, परिजन बोलते परिवार को, परिवार आपका आदर सम्मान न श्रद्धा से करता, हृदय से करता है, पर नौकर आपकी बात मानता है डंडे से। नौकर में बच्चा मानता है, लोग कहते हैं ना कि नौकर तो हमारी बात मानता है, आज्ञा मानता, सम्मान करता, नमस्कार करता है, पर बच्चे नहीं करते हैं, लोग शिकार करते। नौकर तो डंडे के भय से करता है, उसको मालूम है नहीं करूंगा तो मालिक हटा देगा या तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा, इस भय से करता है। परंतु आपके बच्चे को न तनख्वाह का लोभ है न डंडे का भय है। तो बाणासुर ने इस प्रकार से संसार को अपने अनुकूल बना लिया, सभी उसके अनुकूल बन गए जैसे कोई परिवार होता हो। न तच्चित्रम, इसमें किसी प्रकार का वैचित्र नहीं है, तो भगवान की उपासना से अलभ्य भी लभ्य हो जाता है, जो वस्तु दुर्लभ वह भी सुलभ हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर पुष्पदंताचार्य बदला रहे हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में जैसे भी हो आपका कोई उपासना करे, चाहे जान कर करे चाहे जान के करे, आप उस उपासना से श्रेष्ठ वरदान को देते हैं। भस्मासुर का प्रसंग भी आगे आता है कि भस्मासुर भी भगवान शंकर को प्रसन्न किया, परंतु भस्मासुर रावण की तरह से स्वयं ही पार्वती जी को पाने के लिए भगवान शंकर की तरफ दौड़ा कि यदि हम भगवान शंकर को भस्म कर दिए तो पार्वती उपलब्ध हो जाएगी, जगत का गुरु बन जाऊंगा, परंतु होगा विपरीत, उसका विनाश हुआ। तो यहां पर जो ध्रुव मतलब निश्चित, खला मतलब दुष्ट, जो कृतघ्न है, जिससे लाभ प्राप्त करता है उसका तिरस्कार करता है, उसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। यहां दोनों बार बतला दिया, यदि आप किसी की उपासना से कुछ प्राप्त किए हैं, प्राप्त करने के बाद कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करेंगे, जैसा कि मनु संविधान है, मनु महाराज कहते हैं कृतम प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनम्। यदि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो उसके पर जब कृतज्ञता ज्ञापन करे, सनातन धर्म है। यदि आप कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करके यदि आप कहें कि मैंने किया, इसने क्या किया, तो अहंकार होगा। अहंकार मतलब कि हमारे उपासना से हमारे तपस्या से सब कुछ प्राप्त हुआ। एक तपस्वी थे, हिमालय बहुत तपस्या किया, तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रसन्न होकर वरदान देने आए। वरदान देने आए तो तपस्वी ने वरदान में मांगा कि आप हमें अमर बना दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि इस शरीर से अमर नहीं हो सकते हो, मरने के बाद तुम्हें अमरता मिल जाएगी। अमर यह अहंकारी आदमी जब तपस्या करता है अमरता पाने के लिए, तो जब भगवान शंकर ने कहा कि अमरता सशरीर कोई हो नहीं सकता, फिर ऋषि तपस्वी ने कहा कि आप हमें इतना ऐश्वर्य दीजिए कि मांगने वाले को मैं कभी इनकार न कर सकूं। भगवान ने कहा तथास्तु, भगवान के पास क्या कमी। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक रहा, पर धीरे धीरे काल बीतता गया, उसको अहंकार हो गया कि मैंने बड़ी तपस्या की, तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न किया, वरदान में भगवान से हमने अमरता मांगी, पर भगवान ने कहा कि मरने के बाद तुम अमर हो जाओगे और जीते जी अमरता नहीं मिल सकती है, तो हमें ऐश्वर्य प्रदान किया। तपस्वी को अहंकार हुआ कि हमारे तपस्या से ऐश्वर्य मिला, भगवान शंकर ने फोकट में तो दिया नहीं, जो भी कुछ दिया तपस्या से। तो यही अहंकार आदमी को जो है ना भटकाता है, तपस्या करना बुरा नहीं, पर तपस्या का अहंकार अभिमान होना बुरा है। इतना अभिमान हो गया कि जो है दीननाथ अपनी तपस्या का बखान करते रहा। भगवान शंकर ने सोचा बेचारा बहुत तपस्या किया और अहंकार होने के बाद पतन हो जाएगा, और हमने जो वरदान दिया अमरता का विफल हो जाएगा, इसलिए इसको सावधान करना चाहिए। भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश बनाकर उस तपस्वी के पास आते हैं और बोलते हैं भिक्षा मह्यम देही, मुझे भिक्षा प्रदान करो। हाथ उठा के बोला कि आपको जो चाहिए सो मांग लो। बोले कि पहले तुम वचन दो, ऐसे हम नहीं मांगने वाले, हमने मांग लिया तुमने ना कर दिया तो हमारा वचन खाली जाएगा, इसलिए तुम तीन बार पहले संकल्प लो कि मैं अवश्य दूंगा। उन्होंने कहा कि तीन बार नहीं 13 बार संकल्प पढ़वा लो, मैं सबको देने में समर्थ। अभिमानी विचार नहीं करता है, बस संकल्प पढ़ लिया। पांचों ब्राह्मणों ने कहा कि देखो हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण को लोभ नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है, इसीलिए हम आपसे धन नहीं मांगेंगे, धन मांगने से अहंकार हो जाएगा, हम भोग ऐश्वर्य में पड़ जाएंगे, भिक्षा से हमारा काम चल जाता है, आप हमें अपने तपस्या का एक भाग दे दो। उसने कहा ले लो, हमने बहुत तपस्या किया, 1 वर्ष की तपस्या का भाग आपको देता हूं। पांचों ब्राह्मणों ने कहा कि हमें तो बस तपस्या का अंश ही चाहिए। वह घबराया, बोला पांचों को अंश दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, बहुत चिंतित हुआ। ब्राह्मणों ने कहा देखो हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, पहले हमारा नाम सुन लो। ये जो सबसे आगे है इनका नाम है आकाश देव, ये आकाश के हिमानी देवता है। दूसरे हैं मरुद्देव, वायु के हिमानी देवता। और तीसरे जो ब्राह्मण है ये आपके अग्नि देव है, अग्नि के हिमानी देवता। और चौथे ब्राह्मण साक्षात वरुण देव, जल के हिमानी देवता है। और पांचवा जो मैं हूं पूषा देव, ये हम पांचों ब्राह्मण बन के आपके पास आए हैं क्योंकि आपने बड़ी भारी तपस्या की है, आपके तपश्चर्या के महिमा को सुनकर आए तपस्या के भाव को मांगने के लिए। तपस्वी तो घबराया, उन्होंने तर्क दिया कि तुमने हमारे अंश से बैठ के तपस्या की। जल देवता ने कहा कि तुमने हमारे जल को पी के तपस्या किया। मरुद्देव ने कहा कि तुमने हमारे हवा को ऑक्सीजन को लेकर तपस्या किया। आकाश ने कहा कि जहां तुम बैठे थे ना चारों तरफ हमारा ही अंश था, इसलिए हमारा मौलिक अधिकार है तपस्या में। अब तो तपस्या और घबराया, अब तो देना ही पड़ेगा। उसे बात समझ में आ गई, चरणों में गिर पड़ा, बोला अपराध क्षमा करें, मुझे बात समझ में आ गई। तो जो तपस्या है, तपस्या करना अच्छी बात है पर अहिमान हो जाता है तो आदमी अपने इष्ट का भी तिरस्कार कर देता है। परंतु यदि हम जीवन में परमात्मा को आश्रय देंगे तो फिर भगवान रक्षा करते हैं, भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। तो यहां पर कह दिया कि न तच्चित्रम तस्मिन वरी वशीतरी त्वच्चरणयो, आपके चरण की उपासना करने वाले सब कुछ प्राप्त कर लेते, यहां तक कि मौत को भी जीत लेते हैं। कलयुग में मार्कंडेय ऋषि हुए, मृकंडू के पुत्र, उनकी आयु केवल 8 वर्ष की थी। उनके पिता ने बता दिया कि बेटा तेरी आयु केवल 8 वर्ष की है। जब मृत्यु का समय आया केवल 3 दिन बाकी रहे, पिता ये बहुत उदास हो गए। मार्कंडे ने पूछा कि आप इतना उदास क्यों हैं, पिताजी ने सारी बात बता दी। मार्कंडे जी महामृत्युंजय का मंत्र जपते हुए भगवान शिव की शरणागत हो गए। बोले कि आप सबको देने में समर्थ है, आपने आयु यदि आपने जन्म दिया है तो आप हमको अमर ही बना सकते हैं। समयानुसार यमराज आए, जैसे यमराज आकर के अपना यमपाश फेंकते हैं तत्काल भगवान शंकर का विभाव हो जाता है। भगवान शंकर ने यमराज से कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो महामृत्युंजय का जप करता है उसको तुम यमपाश से बांध नहीं सकते। यमराज चरणों में गिर गए, बोले कि महाराज नियम भी तो आपने ही बनाया है ना, आपने ही आयु दी, आपने ही 8 वर्ष की आयु का विधान किया और आपने मुझे यमपद पर बिठाया, तो मैं तो आपके ही काम को पूरा करने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा कि सो ठीक है, परंतु जो महामृत्युंजय का जप करता है तो मुझको यमपाश से बांध नहीं सकते। भगवान शंकर ने मार्कंडेय को अमर चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तो न कस्या उन्नति भवति शिरसस्पै अवनति, भगवान के चरणों में सिर झुकाने पर किसी की भी अवन्नति नहीं होती है। अवन्नति मतलब कि पतन नहीं होता है। हम संसार में जब सिर झुकाते हैं तो कामना सवार होती है और कामना सवार होकर संसार में भटकाती है, पर यही सिर जब भगवान के चरणों में झुकता है तो फिर हमारा हमेशा के लिए कल्याण हो जाता है। अब समय पूरा हुआ, यहीं विराम लेते हैं। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।